ओम शांति। हम सभी के बीच आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी पधार चुके हैं, उनका हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। गीता दीदी जी का जैसा नाम है, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया है। जो हम भगवद गीता में सुनते हैं, कर्मण्येव अधिकारास्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में अपना अधिकार रखो, फल की इच्छा ना हो। और दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में स्थिति समान रहे, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वो आपके जीवन से देखने को मिलता है। आपने 14 वर्ष की अल्पायु में ही ये ज्ञान प्राप्त किया। आप अपने विद्यार्थी काल में बहुत मेधावी छात्र रही हैं और आपने साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। ताली बजा सकते हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान ने आपको इतना तो अधिक प्रभावित किया कि आपने आगे पढ़ने का संकल्प छोड़ प्यारे बाबा की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आपने गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगभग 14 वर्ष आपने भावनगर सब जोन इंचार्ज तरीके अपनी सेवाएं दी। 1993 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में जो नव निर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में आपने रिसेप्शन और आवास निवास विभाग एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 इयर्स तक अपनी सेवाएं प्रदान की। साथ ही साथ आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप विद्यालय के नियमित राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों तथा ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों की विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम के भी प्रभावी शिक्षिका हैं। आप एक कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधन शिक्षिका हैं। आपके द्वारा अनेक लेख लिखे गए जो पत्रिकाओं में छपे हैं और साथ ही साथ दैनिक जागरण, संस्कार एवं अनेक चैनलों पर भी आपके प्रभावी प्रवचन होते रहे हैं। भारत के अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों का आयोजन का तथा संचालन करने का भी आप में विशेष गुण है। 1991 में आपने विदेश के पहले यूएसए का भ्रमण किया और उसके पश्चात अनेक देशों का भ्रमण करके आपने जन जन तक प्यारे बाबा का ज्ञान पहुंचाया और अनेक बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की जो रैलियां उनका भी आपने संचालन और नेतृत्व किया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा हम सभी के बीच आज पधारी हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और आप अपने जीवन के अनुभव से हम सभी को लाभान्वित करेंगे कि कैसे अनेक परिस्थितियां आते हुए भी उन परिस्थितियों पर स्वस्थिति से विजय प्राप्त करें। आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये तीन बार ओम शांति बोलना किसने सिखाया? दादी जानकी जी ने। पहली ओम शांति माना, मैं कौन, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिसको दादी जी अंग्रेजी में कहती थी कि मैं लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। दूसरी ओम शांति माना, मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ। उसको दादी जी अंग्रेजी में कहती थी कि दूसरी ओम शांति माना, मैं माइट, सर्वशक्तिवान बाबा की बच्ची। और तीसरी ओम शांति माना, मुझे क्या करना है। जब पहली दो ओम शांति, मैं कौन और मेरा कौन, ये दोनों सत्य जब रियलाइज हो जाते हैं, तो तीसरे का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है कि मुझे क्या करना है। ये समय कौन सा है, अब मेरा धर्म क्या है, कर्म क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अभी का विषय है स्वस्थिति को, आत्मस्थिति को इतना नॉलेजफुल और पावरफुल बनाए जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर सके। स्वधर्म और परधर्म, अगर ये दोनों बातें परख लें और स्व को परमात्मा बाप से जोड़ दे, एकाग्र कर ले, तो ऑटोमेटिक हमारे में लाइट और माइट आ जाएगी। फिर कोई भी परिस्थिति हमें भारी नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी। गीत में भी सुना ना, परिस्थितियों को कह दो हमारा खुदा बड़ा है। ये समय है महापरिवर्तन का, जानते हैं ना सभी। युग नहीं बदल रहा है, कल्प बदल रहा है। 5000 वर्ष का एक कल्प पूरा हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की बात नहीं है, युग युगांतर की बात नहीं है, ये तो कल्प कल्पांतर की बाजी है। इसलिए इस समय को कल्याणकारी संगम युग कहते हैं और इस संगम की वेला में हमें बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ करना है और जो भी सर्व अलौकिक खजाने मिले हैं बाबा के तरफ से, उन खजानों को हमें सफल करना है। तो एक तो ये महापरिवर्तन का समय है, इसके लिए हमें आमूल परिवर्तन करना है। आमूल परिवर्तन माना रूट से चेंज लाना है। एक होता है टेम्पररी परिवर्तन, ऊपर ऊपर से चेंज करना, परंतु ये समय है जड़ों से परिवर्तन करना। जैसे लॉन ऊपर ऊपर से हम काट लेते हैं, लेकिन फिर जब बारिश होती है तो गर्मी में बिल्कुल खाली लगता मैदान, फिर से मैदान में घास उग निकलता है, क्योंकि हमने तो ऊपर ऊपर से ही काटा था, जड़ों से नहीं काटा, रूट से चेंज नहीं किया। जिसको आमूल परिवर्तन कहते हैं तो वो परिवर्तन परमानेंट नहीं होता और इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हमें रूट से चेंज करना है। ये समय है हमें स्व में परिवर्तन लाना है, और जब स्व में परिवर्तन लाएंगे तो सब में परिवर्तन ला सकेंगे। इसलिए हमारा स्लोगन है, स्व को बदलेंगे तो संसार को बदल सकेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये समय की पुकार है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि यही समय है जब स्वयं बाबा सृष्टि पर आते हैं और हमें जन्म जन्मांतर के लिए की हुई भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। ये सत्य ज्ञान ऐसा है जो हमारे में अंदरूनी वैराग्य लाता है, आंतरिक वैराग्य लाता है, क्योंकि सत्य ज्ञान से ही सद्विवेक आता है, हम सही और गलत को परख सकते हैं। और ये परखने से ही जो सही ज्ञान है उनसे राग आता है, और जो गलत ज्ञान है उससे वैराग्य आता है। राग माना आसक्ति, हमें सत्य ज्ञान से इतना प्यार हो जाता है, जिसको जीवन में धारण करने का हम सही पुरुषार्थ करते हैं। और उसको राग कहते हैं, प्यार कहते हैं, इससे हमें आसक्ति होती है। जब अंदरूनी वैराग्य आता है बुराइयों से, विकारों से, ये ही हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। आप सबकी योग तपस्या भट्टी का अमरेला थीम भी क्या है? देहत की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ। आजकल जो 2004 की अव्यक्त मुरलियां रिवाइज हो रही है, उसमें भी हम सुनते हैं वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य। माना देह भान से वैराग्य, देह अभिमान से वैराग्य, देह अहंकार से वैराग्य, देह संबंधों से, दैहिक पदार्थों से, इस देहभान की दुनिया से वैराग्य और दैहिक संस्कारों से वैराग्य। ये संपूर्णतः देह भान के संस्कारों से पूरा वैराग्य। जब आंतरिक वैराग्य आता है तो हमारे उपराम वृत्ति आ जाती है। हमारी आंतरिक वृत्ति विकारों से, कमी कमजोरियों से, अवगुण बुराइयों से ऊपर उठ जाती है। तो ये उपराम वृत्ति आती है तो हमें त्याग करना सहज हो जाता। जो भाई बहने 5 वर्ष से कम वर्षों से ज्ञान में आए हैं, चल रहे हैं, वे हाथ ऊपर करें। काफी भाई बहने और 25 वर्ष से अधिक वर्षों से जो ज्ञान में चल रहे हैं वे हाथ ऊपर करें। ये भी बहुत है। तो जो नए भाई बहने हैं उनके लिए बाबा ने कहा है कि लास्ट आने वाले भी फास्ट और फर्स्ट जा सकते हैं। वो कोई कोई एग्जाम्पल बनेंगे। विजयी माला में तो बरसों से पुरुषार्थ करने वाले विजयी बने हुए रतन ही आएंगे, परंतु बाबा ने नयों के लिए भी कहा है कि अगर वे अपने समय को, संकल्पों को और श्वास को वेस्ट नहीं करेंगे तो वे आगे जा सकते हैं। ये बाबा ने आप पुरानों नयों को कहा है कि हम अपना संगम युगी समय और अपने संगम युगी संकल्पों को व्यर्थ नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, वे भी आगे जा सकते हैं। तो स्व की स्थिति को हमें शक्तिशाली बनाना है। चारों सब्जेक्ट जो बाबा पढ़ाते हैं उसमें हमें बैलेंस करना है, पास विथ ऑनर्स बनना है। ज्ञान का सब्जेक्ट जितनी गहराई से हम समझेंगे उतने ही हम नॉलेजफुल बनेंगे, सेंसिबल बनेंगे। जितना गहरा ज्ञान होगा, विकारों के सूक्ष्म स्वरूप को, माया के सूक्ष्म स्वरूप को हम परख सकेंगे। इसलिए ज्ञान को स्टडी करना है। केवल मुरली सुननी नहीं है, अध्ययन करनी है, अच्छी तरह से सुननी है, पढ़नी है, मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं, दिन में बार बार वो पॉइंट्स पढ़ने हैं, दूसरों को सुनाने हैं। ये है ज्ञान की स्टडी, अध्ययन करना। जितना स्वाध्याय करेंगे, स्व का अध्ययन करेंगे, तो आप अच्छी रीति आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए, आप पांडव भवन की भट्टी में आए हैं। कितने भाई बहने पांडव भवन में भट्टी के लिए आना चाहते हैं। आप सबका नंबर लग गया है, खुशी है ना सबको, बहुत खुशी, क्योंकि यहां की हर शय में, हर कण कण में, हर स्थान में बाबा बाबा याद आता है। जिधर भी आप घूमेंगे यहां नेचुरल योगी बनने का वरदान है। आपको योग के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाबा मम्मा की और हमारी सभी दादियों की तपोभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, उनकी वरदानी भूमि है, परिवर्तन भूमि है। तो दादियों के, बाबा मम्मा के तपस्या के वाइब्रेशन हर स्थान में भरे हुए हैं। चार धाम जिसको कहते हैं, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये चारों ही स्थान पर आप जरूर जाते होंगे और दिल से तपस्या करते होंगे। दो दो मिनट निकाल के भी आप बैठते हैं इन चारों ही धाम में, तो आप अपने आप में बहुत बल भर सकते हैं, लाइट माइट का अनुभव कर सकते हैं। आप जल्दी अपने आप को फरिश्ता अनुभव करेंगे। कितनी लंबी लिस्ट मुन्नी बहन जी के पास है, एक एक सेंटर्स को, ग्रुप सेंटर को याद करके हर वर्ष नंबर लगाती है। पिछले साल की तो सभी भट्टियां कैंसल हो गई, यहां कंस्ट्रक्शन करना था, रिनोवेशन करना था, तो यहां का भंडारा और पुराने भाई बहन जिसमें रहते हैं वो लाइट हाउस रिनोवेशन हुआ। वही सेंटर्स को शायद इस साल सबको भट्टियां दी हुई है। तो इस पावन भूमि, तपोभूमि में अपनी आत्म स्थिति को आप जितना शक्तिशाली बनाना चाहें बना सकते हैं। यहां आपके मन में कोई व्यर्थ नहीं आएगा। आप अपना कारोबार, परिवार को दिल से दूसरों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर यहां आए हैं। यहां आप जितनी एकाग्रता से और एक रस स्थिति से योग तपस्या करेंगे, उतनी शक्तिशाली स्वस्थिति आप बना सकते हैं। और दादियों के जीवन से भल उन्होंने इतनी जिम्मेवारियां उठाई, बाबा के समय में तो 150 से भी कम सेंटर्स खुले हुए थे, परंतु दादी प्रकाशमणि जी, दादी मनमोहिनी जी और सभी दादियों ने मिलकर 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं खोली। दादियां इतनी सेवा में व्यस्त रही पर साथ साथ अपनी स्वस्थ स्थिति पर भी ध्यान दिया। अपनी स्वस्थ स्थिति में भी फॉलो मदर फादर किया, बाबा मम्मा को फॉलो किया और अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाया। हरेक ने कर्मेंद्रियों पर, विकर्मों पर, प्रकृति पर, माया पर जीत पाई। वे कर्मातीत बने और लास्ट स्टेज अपनी कर्मातीत बनाकर संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन गए। तो हमारे सामने स्वस्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले अनेक एग्जाम्पल है। बाबा ने तो अपने पुरुषार्थ से बनाए, उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थे। आप सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा कि जैसे ही साक्षात्कार हुए, बाबा को बेहद का वैराग्य आ गया, अपना धंधा छोड़ दिया, अपना जो हिस्सा मिला वो ले लिया और वापस कलकत्ता से हैदराबाद आकर अपने घर में ही बाबा ने सत्संग शुरू कर दिया। खुद और अपने परिवार को इस ओम की धुनी ज्ञान के अध्ययन में लगा दिया। हमें तो ओम स्वरूप में स्थित होना है। कल जयंती बहन जी का क्लास था, एक मधुबन निवासी ने पूछा कि कई हमें कहते हैं कि क्या हम 5 मिनट ओम की धुनी बोले, तो जयंती दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो तो बाबा से हमें पूछना पड़े और दूसरा हमें तो ओम स्वरूप बनना है, अपनी ओम माना स्व की स्थिति को इतनी पावरफुल बनाए कि ये परिस्थितियों का समय है, उनको हम विजयी बन करके पार करें। परिस्थितियां कोई भी हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम स्वयं अचल हैं, अविनाशी हैं। हमारे आत्म स्वरूप के आसपास ये जो शरीर है वो हलचल है और मैं आत्मा अचल अविनाशी हूँ। ये ही स्मृति का स्वरूप बनना है। उसके आसपास प्रकृति का वातावरण है, परिवार है, संसार है, ये सब कुछ हर क्षण बदलता रहता है। हमें इस पर्यावरण, संसार, वातावरण, परिवार और शरीर के प्रभाव से मुक्त होना है। अपनी आत्म स्थिति को अचल, अडोल, स्थिरियम और एकरस बनाना है। अब हमें अभ्यास ही करना है। विदेशियों से जब हम सब ने पूछा, उन्होंने एक ही जवाब दिया, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्म स्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है। परम धाम का जो हमारा शुद्ध सत्य शांत स्वरूप है, उसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। बाबा भी अपनी साकार मुरलियों में हमें बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो। रोज की मुरली में ये आता है। जरूर ये जैसे ड्रामा का डायरेक्टर जब तक एक्टर योग्य एक्शन नहीं करता है, उनको कहता है फिर से रीटेक रीटेक, वो ही एक्शन बार बार कराता है। तो बाबा इस बेहद के ड्रामा में हमारी हर एक्शन को करेक्ट करते हैं, इसलिए फिर से रोज की मुरली में अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी बनने की शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा तो वो ही रिपीट करते हैं। ये रिपीट नहीं करते हैं, परंतु ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ है। इसलिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन को रोज रिवाइज करते हैं। हम सिर्फ रिपीट करते हैं, मन के लेवल से या मुख से। हमें रिपीट नहीं करना है, मन बुद्धि के अंदर रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझकर रियलाइज करना है। इसलिए भट्टियों में भी रियलाइजेशन सेशन होते हैं। हम रियलाइज करें, महसूस करें, गहराई से फील करें, तो हम अपनी आत्मस्थिति को बार बार देखेंगे और बनाते रहेंगे। यहां आप मधुबन के वातावरण में आए हैं। ओरिजिनल मधुबन तो यही है ना, इसलिए मधुबन के पांडव भवन के नाम पर सब तैयार हो जाते हैं। इस मधुबन की भूमि में हमें स्वदर्शन करना है, स्वचेकिंग करना है कि हम बाबा जैसे कहां तक बने हैं, संपन्न और संपूर्ण कहां तक बने हैं, हम बाबा मम्मा जैसे कितने बने हैं। खुद को देह समझते थे तो देह को बार बार देखने का अभ्यास हो गया था। आजकल तो बहनें माताएं पर्स में ही आईना रख लेती हैं और अपनी मेकअप किट रख लेती हैं, बार बार अपने बाल ठीक करती हैं, चेहरा ठीक करती हैं, परंतु वो देह अभिमान है, इसलिए देह को देखते रहते हैं। पर बाबा ने हमें सच्चा परिचय दिया कि मैं आत्मा हूं। दादियां सुनाती थी, विशेषकर रतन मोहिनी दादी हमें बार बार सुनाती रहती थी कि शुरू में हम एक ही संकल्प में घंटों स्थित रहते थे कि मैं वो ही परमधाम में स्थित शुद्ध आत्मा हूं। बाबा एक ही संकल्प बोर्ड पर लिख देते थे और हम घंटों तपस्या करते थे। वो तपस्या का फाउंडेशन ही हम सबको सिखाया। अब हमें सिर्फ याद में नहीं रहना है, परंतु जब समझ पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक योग अभ्यास करते हैं तो उसको तपस्या कहा जाता है। अब तपस्या करनी है, प्रैक्टिस माना दृढ़ता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक लाइट माइट बनने का अभ्यास करना, वो है तपस्या। ज्वालामुखी योग इसी को कहते हैं। कुछ नया नहीं करना है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता से चारों ओर से बुद्धि को हटाकर पूरी उपराम वृत्ति से, वैराग्यता से तप करना है। वो सही तप नहीं जानते थे ऋषि मुनि साधु सन्यासी। उन्होंने जंगल में जाकर देह दमन की तपस्या की, हठ दमन की तपस्या की, पर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग की हमें तपस्या सिखाई। हर कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर बाबा को अपने साथ रखकर तप करना है। तो ऐसी तपस्या सबकी चल रही है। कौन कौन यहां ऐसी तपस्या कर रहे, हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। तो स्वस्थिति, ये सब कुछ करने से मजबूत बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। तब जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी, फिर वो शारीरिक बीमारी की आती है, पारिवारिक कोई मुसीबत आती है, समाज के तरफ से कोई विघ्न आते हैं, आर्थिक परिस्थितियां आती हैं, गवर्नमेंट के तरफ से कोई परिस्थितियां आती हैं, तो इन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा का सत्य ज्ञान हमारे साथ है, सर्व शक्तियां हमारे साथ है। हम बाबा की मानेंगे तो सर्व शक्तियां भी हमारा मानेगी, जी हजूर करेगी। बाबा ने एक बार अव्यक्तवाणी में कहा था कि आप जहां होंगे वहां तक बाढ़ आ जाएगी, पानी आ जाएगा, पर आप पर कुछ भी असर नहीं करेगा। इतनी प्रकृति आपको मदद करेगी। बाबा से कंबाइंड बन के रहेंगे तो हमारा विजय है ही है। तो सभी कंबाइंड रहने का अभ्यास करेंगे। आप और बाप, कर्म और योग, खुदा और खिदमत, सब कंबाइंड स्वरूप आप अव्यक्ति इशारे में रोज सुनते हैं, अभ्यास में भी लाते हैं। जैसे ब्राह्मण और फरिश्तापन, फरिश्ता सुदेवता, ये हमारे एक के बाद एक कंबाइंड स्वरूप है। तो हमें अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना है। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये सभी स्वरूपों का अभ्यास करना है। अपने बिंदु स्वरूप का भी अभ्यास करना है। मैं बिंदु हूँ, मेरा बाबा बिंदु है, और जो बीती बातें हैं उनको बिंदु लगाना है। तो ये जो जो बातें बाबा ने सिखाई है और ट्रैफिक कंट्रोल 5 बार बहुत दिल से करना है। कई बार हम स्थिर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, परंतु मन घूमता रहता है। मन से ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ये सारे अभ्यास स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने वाले हैं। आप सब दिल से ये अभ्यास करेंगे तो जरूर आप शक्तिशाली बनेंगे। योग जैसे ज्ञान सेंसिबल बनाता है, योग हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाता है। दिव्य गुणों की धारणा हमारे चलन और चेहरे को दिव्य बनाता है। और सेवा के सब्जेक्ट में मास्टर बनने से, सर्विसेबल बनने से दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। तो ये ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, दुआओं का, खुशी का, ये सब खजाने हम सफल करते जाएंगे तो हमें भी अपनी स्थिति बनाने में सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं ना, सफल करो और सफलता पाओ। तो ये स्थिति बनाने की, क्योंकि संगम युग की अचीवमेंट हमारी पावरफुल अवस्था है। अगर हमने स्थिति नहीं बनाई, बाबा कहते हैं कि अगर सेवा रह जाएगी तो और भी कर लेंगे, पर स्थिति नहीं बनी तो और कोई कर नहीं सकता है। आपकी स्थिति आपको ही बनानी है। तो अपनी स्थिति बनाने के लिए आप सभी यहाँ आए हैं, उसमें आपका ये अभ्यास, ये यहाँ का वातावरण, यहाँ के निवासियों ने जो अपनी स्थिति बनाई है, दादियों ने जो इस भूमि को तपोभूमि, वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि, कर्म भूमि बनाई है, वो वाइब्रेशंस आप कैच करें। और जब भी आप योग का अभ्यास करते हैं, आप अपने स्व को देखिए, लक्ष्य की तुलना में अपने आप को चेक करिए। यहाँ भी देखो, सारे पुरुषार्थ के चित्र लगे हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, तो उससे अपना कंपैरिजन करके अपनी स्व चेकिंग करें कि हम लक्ष्य के अनुसार, मंजिल के अनुसार कहाँ तक ऐसा बने हैं। तो ये है स्व स्थिति को गहरी, ज्ञान युक्त, योगी युक्त, पावरफुल बनाने से और तपस्या को एकाग्र और दृढ़ता संपन्न बनाने से आप जो भी समय अनुसार, हिसाब किताब अनुसार जो परिस्थितियां आती हैं उस पर विजयी बन सकेंगे। ओम शांति। सभी खड़े हो जाएं। कब से आप बैठे हैं? हाथ ऊपर करें, स्ट्रेच करें। देखो, प्रयास करो, छत को लगाओ हाथ, हाँ? हाँ बहुत अच्छा। अपने पांव को स्ट्रेच करें, अपनी अंगुलियों पर, पांव की अंगुलियों पर ऊंची करें अपनी एड़ियों को। हाँ पांव स्ट्रेच करना आता है। हाँ कदम ताल करिए, अच्छा अपने कमर को भी स्ट्रेच करिए, कमर राइट साइड झुकाइए, लेफ्ट साइड झुकाइए, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकिए, ज्यादा नहीं झुकना हाँ कहीं गिर न जाए, गर्दन को झुकाइए राइट साइड लेफ्ट साइड, आगे झुकाइए पीछे झुकाइए, गर्दन को भी आपने स्ट्रेच किया, कमर को भी ठीक किया। हाँ अब आपको अभ्यास के साथ साथ शरीर से भी घुमाएंगे और मन को भी नए नए अभ्यास में स्थित करेंगे। अब मैंने स्वयं को जान लिया है, पहचान लिया है, निश्चय से मान लिया है और दृढ़ता से स्वीकार कर लिया है। मैं ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म चमकता हुआ चैतन्य आत्म सितारा हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर पांच तत्वों से बना जड़ है, मिट्टी है, मैं आत्मा मस्तक में स्थित हूँ जिसका सरफेस पॉइंट भ्रुकुटि है, परंतु मैं मस्तक से अलग हूँ। मैं परम धाम निवासी शुद्ध पवित्र निराकारी स्वच्छ विदेही ज्योति बिंदु आत्मा मैं शांत प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुख आनंद अनुभव करती हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा निज स्वरूप सातों गुणों से संपन्न है। सतो प्रधान अर्थात सप्त गुणों से भरी हुई संपन्न आत्मा मैं परम धाम से इस भौतिक जगत में आकर कर्म अनुसार भौतिक शरीर धारण करती हूँ। मैं चैतन्य शक्ति बिंदु आत्मा सातों गुणों से युक्त होकर सत्कर्म करती हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कारों का चैतन्य समूह हूँ। शरीर पांच कर्मेंद्रियों का समूह है। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाइए। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप परम चैतन्य परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु परम पिता परमात्मा की ईश्वरीय संतान हूं। स्वयं परम पिता ने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के मुख से अपना परिचय दिया है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ शिव। स्वयं शिव बाबा ने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। सबने शिव बाबा को पहचान लिया है। निश्चय पूर्वक मान लिया है। दिल से स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम सभी बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे। शिव बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा विश्व कल्याणकारी बाबा नॉलेजफुल बाबा पतित पावन सर्वशक्तिमान बाबा और राइट साइड घूम जाइए। बाबा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत का आलोक परलोक का संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर बीती हुई बातों पर बिंदु लगाया है। इस जन्म में ज्ञान से पहले जो विकर्म हमने किए हैं मन ही मन रियलाइज करें, महसूस करें गहराई से और बाबा पर आहुति चढ़ा दें, बिंदु लगा दें। बाबा को सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दें। अब तो सत्य ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों को परख सकते हैं, विकारों के वश कौन कौन से विकर्म किए, सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिख कर बाबा के लेटर बॉक्स में डाल दे और इसको बिंदु लगा दे। फिर याद करके आत्मा पर दाग नहीं लगाए, अगर मुझे फ्लॉलेस डायमंड बनना है, बेदाग हीरा बनना है, तो अपनी जीवन कहानी मधुबन में आए हैं तो सच्चाई से बाबा को लिख के दे दे। इसको कहते हैं बीती को बिंदु लगाना। राइट साइड घूम जाएं। मेरे इस ज्ञान योग के पुरुषार्थ का लक्ष्य ही ये है, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न माना भरपूर, जैसे भौतिक सुख सुविधा के सभी साधन घर में हम बसाते हैं, तो हम अपने को संपन्न समझते हैं। हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, परंतु एक कार नहीं है, तो हम अपने को संपन्न नहीं समझते। ऐसे ही बाबा के ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सेवा की दुआओं से, खुशियों से मुझे अपने आप को संपन्न बनाना है, भरपूर करना है। संगम युग के समय को और इस अंतिम जन्म में जो स्थूल धन साधन जमीन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये सूक्ष्म खजाने और स्थूल धन साधन जमीन जायदाद मुझे सेवा में सफल करना है। मुझे बाबा की श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, मन वचन कर्म से भारत को स्वर्ग बनाने के बाबा के कार्य में मददगार बनना है, सफल कर देना है। राइट साइड घूम जाइए, प्यारे बाबा मम्मा को देखते हुए अपने लक्ष्य को संपन्न और संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करिए। बैठ जाएं।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गीता बेन जी, आपने भट्टी में हमें क्या करना है, कैसे अपने संस्कारों का, जीवन का आमूल परिवर्तन करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि ये संस्कार घास की तरह नहीं तो फिर से पैदा हो सकते हैं। साथ साथ मधुबन तपोभूमि का भी आपने महत्व बताया और उपराम वृत्ति हमको कैसे बनानी है उसका भी आपने मार्गदर्शन दिया। अंदरूनी वैराग्य हमको कैसे आना चाहिए और ज्वालामुखी तपस्या किसको कहते हैं कि समझ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक लाइट माइट बनने का अभ्यास, यही हमारी ज्वालामुखी तपस्या है। और जब हमारी ज्वालामुखी तपस्या होगी तभी हम शरीर की व्याधियों की परीक्षा में या समाज के द्वारा या संबंधियों के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आई हुई परीक्षाओं में हम सहज विजयी बन सकते हैं। पांचों स्वरूप के बारे में भी आपने कैसे अभ्यास करना है वो भी सिखा दिया। साथ ही साथ चारों ही सब्जेक्ट्स के द्वारा हमको क्या क्या प्राप्त होता है और उस प्राप्ति से कैसे हम समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारी संगम युग की असली अचीवमेंट है। तो सबको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम सभी दीदी को स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, क्योंकि हम विदाई नहीं कहते, हम बधाई कहते हैं। फिर से हमको मिलते रहे और ऐसे मार्गदर्शन देते रहे।